نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. ہمارا آج کا سیشن باب الوضو یعنی کتاب الوضو ہی کی کنٹینیوشن ہے اور حدیث نمبر 121 سے ہم شروع کریں گے. کتاب کے پیج کے حساب سے دیکھیں تو یہ پیج نمبر 152 کے مڈل میں ہے اور نیا باب ہے, اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت چھوٹے چھوٹے باب ہیں, چیپٹرز کہہ لیجئے, باب کہہ لیجئے, ٹاپکس کہہ لیجئے. تو اب جو ٹاپک ہے ہمارا وہ چلے گا الاستنجاء بالماء. پیچھے ہم نے دیکھا کہ وضو کرنے کے مختلف چیزیں, اور آپ یہ سمجھتے جا رہے ہیں کہ امام بخاری نے یہاں ترتیب نہیں رکھی کہ بھائی ترتیب سے بتایا جائے بلکہ مسائل کے لیے رکھا ہے. انشاءاللہ اینڈ پہ ہم اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل سے گو تھرو کریں گے اور جو چیزیں رہ جائیں گی اس کو دیکھیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں باب الاستنجاء. استنجاء کیا ہے؟ نون جیم حمزہ, یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ نجات ہے, نجا, نجوتا, نجات, کچھ اس طرح کیے. تو الف سین تا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹو سیک, کچھ پانا. پیچھے بھی باب ہو چکی, باب استفال ہے, تو گویا کہ نجات پانا. ٹھیک ہے, یہ تو اس کی لفظی وضاحت ہو گئی, لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر یعنی اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد گندگی سے نجات پانا. جسم کے اوپر کچھ نہ کچھ گندگی رہ جاتی ہے تو کس طرح کی جائے, یہاں پہلی جو حدیث ہے اس میں ہم دیکھیں گے پانی سے, اسی طرح آگے ہم دوسری چیزوں کو بھی دیکھیں گے. روایت ہے ان انس رضی اللہ عنہ قال, حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اذا خرجا, جب وہ نکلے, لحاجتی ہی اپنی حاجت کے لیے, حاجت کا لفظ یہاں کنایا ہے ٹوائلٹ کے لیے یعنی اپنے آپ کو صاف کرنا, پیشاب اور پاخانہ, یہاں حاجت کہہ دیا گیا. یہاں سے بھی آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام جب بات ضرورت کی پیش بھی کرتے تھے تو بہت کھل کے نہیں بات کرتے تھے, یعنی اپنی حاجت کے لیے نکلے تو سمجھ آ گئی کون سی حاجت ہے. حاجتیں اور بھی بہت سی ہوتی ہیں لیکن یہاں خاص طور پہ ٹوائلٹ یوز کرنے کی حاجت. پھر کیا ہوا؟ اجیو, میں آیا, اجیو آیا, انا میں, و غلام ایک اور لڑکا. یہ کون سا تھا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی اور مدینہ کا لڑکا تھا, وہ بھی آپ کے ساتھ چل پڑا. مانا ہمارے ساتھ, اداوت مم مائن, ایک برتن. اداوا کہتے ہیں برتن کو, مم میں سنجا کر, یعنی حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک دوسرا لڑکا آپ کے ساتھ پانی کا ایک برتن لے کر جاتے, پھر آپ اسے استنجا کرتے. حدیث ہے باپ کے استنجا کرنے میں, تو یہ تو بات صاف سمجھ آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہاں اس حدیث کے ساتھ آپ دیکھیے کہ ایک کوشچن ذہن میں آ سکتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ساتھ جاتے تھے, بلکہ یہ بات ابھی یہاں دیکھتے جائیں گے تو اور بھی حدیثوں میں ہم دیکھیں گے, اگلی روایت میں بھی ہے, پھر ابن عمر کا بھی ہے, اور اسی طرح ابو قتادہ کی ایک روایت آ رہی ہے. تو ذہن میں کوشچن آ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی کیوں جاتا تھا نا, اور کیا کوئی کسی کے ساتھ جا سکتا ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ حضرت انس آپ کے خادم تھے, اور دوسری بات یہ ہے کہ بزرگ کی خدمت کرنا یا بڑوں کی خدمت کرنا, حتیٰ کہ اس قسم کی چیزوں میں بھی جہاں کے بالکل پرائیویٹ میٹرز ہوتے ہیں, تو یہ دعائیں لینے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے, عاجزی بھی آتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لے جاتے تھے ساتھ؟ سکھانے کے لیے. نبی کا ہر کال اور فعل اور عمل جو ہوتا ہے وہ امت کے لیے نشانی ہوتی ہے. آگے ہم پڑھیں گے کہ کوئی صحابی بتا رہا ہے میں نے تین ڈھیلے پکڑے, کوئی کہتا ہے یہ پکڑا تو اللہ کے نبی نے منع کیا, تو یہ تعلیم کے لیے بھی ہوتا تھا کہ کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ بڑوں کو خدمت کروانے میں کبھی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. ہمارے کلچر میں ایک عجیب سی رسم آ گئی یہ پچھلے کوئی 15-20-25 سال میں کہ نہیں نہیں ہم کسی سے خدمت نہیں کریں, ہمیں کسی کا محتاج نہ کریں, نہیں تم اپنی زندگی جیو. کبھی شادی ہوتی ہے تو اکثر مرد تم بھی تم خوش رہو ہماری خیر ہے, کبھی آپ یہ جملہ نہ بولیں. وہ آپ کے اس جملے پہ عمل کریں گے نا نہ سمجھی میں, تو بعد میں آپ کو ہی غصہ آئے گا, اب یہ ان کو ہوش ہی نہیں, یہ تو پوچھتے ہی نہیں ہے, اٹھتے ہی دیر سے ہیں, ہم تو کھا چکے ہوتے ہیں پھر یہ آتے ہیں, ان کی تو اپنی جینے ہیں. اور حقیقت ہے کہ ایک ساتھ رہنے والے گھر ہوٹل تو نہیں ہوتے کہ جس کا جب دل چاہا اٹھا اور جب دل چاہا اس نے کھانا آرڈر کر دیا. تو گھر گھر کا بنتا ہے جہاں بڑے اور چھوٹے مل کے رہتے ہیں, سونے کے ٹائم, جاگنے کے ٹائم, کھانے پینے کے ٹائم اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت زیادہ ہارمنی ہو جاتی ہے. تو پہلے تو ہم کہہ دیتے ہیں لیکن بعد میں وہ بچے بچیاں بہو بیٹیاں جب ویسی بن جاتی ہیں تو ہمیں پھر برا لگتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں دیکھو شروع میں تو ایسی تھی اب ایسی ہوگی. وجہ یہ کہ ہم نے ان کو بہت خراب کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے خدمت لینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے, یہ آگے بھی آئے گی بات. लेकिन यहाँ भी सिर्फ इतनी बात पे रहते हैं कि पानी से इस्तिंजा किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे ढेलों का इस्तेमाल भी जायज़ है, नजासत दूर हो जाती है, लेकिन बेस्ट थिंग जो है वो पानी है, क्योंकि पानी जो है पाक करने वाला। फिर इसी तरह एक और रिवायत में भी इसी मौजू को लिया गया, और अगला टॉपिक थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ क्या है, हमलुल अनजती मल माई फिल इस्तिंजा, हमलू उठाना अल अनजा बर्ची। छुरियाँ मुख्तलिफ किस्म की होती है ना, कोई छोटी होती हैं कोई बड़ी होती हैं, तो बर्ची अमूमन वो होती है जिसके साथ खोदा जाता है कोई ज़मीन के अंदर। बाज़ दफ़ा आप देखिए किसी की नोक लंबी होती है, कोई राउंड एज वाली होती है। अगर आप पाकिस्तान के किसी गांव से अगर आपका गुजर हो इत्तफाक़ो, तो कभी कुदाल कई और इसी तरह की कुछ और आरी वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो ये अंजा लेके साथ जाना पानी में इस्तंजा के लिए। कैसे होगा इसको हम पढ़ते हैं, वफ़ी रिवायत थी, और इसी रिवायत में यानी पीछे से जो बात चल रही थी उसी, जब भी कोई हदीस फी रिवायत थी हो तो मराज है कि इन्हीं की यानी अनस ही की एक और रिवायत में क्या है, मिन मा इन पानी के साथ व अनजती और बर्छी यस्तंजी वो इस्तंजा करते थे कौन, नबी सल्लम बिल माई पानी के साथ, बुखारी की रिवायत है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि बर्छी क्यों ले गए। पहली बात देखिए कि आज के दौर पे क्या मत कीजिएगा कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ उठा के जाएं तो किसी को शक होगा कि आप तो हथियार लेके जा रहे हैं, और जहाज़ में आप बर्छी साथ रख लें कि मैं टॉयलेट में जा रहा हूँ, तो ये बात नहीं है। हर चीज़ की एक हुक्म और वजह होती है। अरब लोग खुली जगहों पर जाते थे और वहाँ की ज़मीन पथरीली थी। पहली वजह तो ये होती है कि पथरीली ज़मीन पर अगर वो कज़ाए हाजत करते तो फिर पेशाब की छींटों के वापस आने का ख़तरा होता था। तो वो लोग क्या करते थे कि जहाँ बैठने का इरादा होता था वहाँ ज़मीन को थोड़ा सा खोद लेते थे, हल्का सा जब नरम कर लेते थे एब्जॉर्बिंग हो गई तो फिर वहाँ छींटे नहीं आते थे, एक वजह ये है। दूसरी वजह ये होती है कि दूर निकलते थे जब, जाहिर है कि लोगों की नज़रों से दूर होने के लिए जंगलों में चले जाते थे या थोड़ी सी आबादी से दूर, तो डर होता था कि रास्ते में कोई मुझी जानवर ना आए। बाज़ दफ़ा सांप फिर रहे होते थे वहाँ, बाज़ दफ़ा बिच्छू हो सकते हैं, तो ये बर्छी इसलिए भी ली जा सकती है कि ऐसे जानवरों से वास्ता ना पड़े। और इसी तरह फिर कोई बड़ा जानवर भी आ सकता है, आपको पता है कि सहराओं और जंगलों में तो कुछ भी किसी वक्त हो सकता है। और इसी तरह से फिर एक और चीज़ है कि कोई और इंसान का ख़तरा, कोई डाकू कोई चोर, तो ये किस्म का हिफाजत के लिए था, तो अल्लाह के नबी इसको लेते थे। हमें इससे क्या पता चला कि अगर इंसान टॉयलेट के लिए जाए कज़ाए हाजत के लिए तो ज़रूरत की चीज़ें साथ ले जा सकता है। और बाज़ दफ़ा कहते हैं कि वो जो होती थी अनजा वो चौड़ी सी होती थी, बिल्कुल जहन में वो कई टाइप की एक चीज़ रख लेना, तो ज़रूरत पड़ती तो कभी कभी उसको एज अ सुतरा अपनी हिफाजत और अपनी आड़ के लिए भी इस्तेमाल करते थे कि दूसरों की नज़रों से छुप सके। ठीक है, फिर अगला बाब क्या है, अनही अनिल इस्तिंजाई बिल यमीन, अनही मना ममानियत प्रोहिबिटेशन अनिल इस्तिंजाई इस्तिंजा करने की बिल यमीनी दाएं हाथ से। अब ये देखिए कितना अहम इशू है इस वक्त कि हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, अनबी क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाल, हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा जब शरीबा पिए अहदुकुम कोई एक तुम में से, फला पस नहीं यतनफ़स फिल ईनाई सांस ले बर्तन में, यानी जब कोई पानी पीने की कोई चीज़ पिए तो बर्तन में सांस ना ले। जैसे अगर ये पानी रखा है तो मैं इसको पीने के दौरान साथ साथ इसमें सांस लूँगी तो वो पसंदीदा अमल नहीं है। और दूसरा हुक्म, व इज़ा अतल खला, जब कोई बैतुल खला के लिए आए, फला यमस्सा तो ना छुए ज़करहू अपनी शर्मगाह को, भी यमीन ही अपने दाएँ हाथ से, वला यतमस्सख और ना मस्सख करे भी यमीन ही दाएँ हाथ से। इसमें आप देखिए कि हज़रत क़तादा, आप इनका बहुत कम जिक्र सुनेंगे, ये उन खुशकिस्मत सहाबे कराम में से कि अल्लाह के नबी ने इनको कहा कि जिसने किसी बेहतरीन शाह सवार को देखना हो वो अबू क़तादा। बड़ा खूबसूरत इनका एक वाकया भी आता है कि किस तरह एक मौके पे ये अपनी बर्छी लेकर अपने घोड़े पे बैठ के निकले और किस तरह से इन्होंने दिफा किया था एक मौके पे। यानी बहुत ही मुझे ऐसे लगता है कि हर एक को अल्लाह सुब्हानहु तआला कोई एक खूबी दे देता है, फिर उसकी वजह से उसका नाम आ जाता है। इनका नाम आपको इल्म में नहीं दिखेगा, इनका नाम आपको बहुत ज़्यादा जंगों में नहीं दिखेगा, लेकिन कोई एक आध वाक्या ही इंसान की शोहरत का सबब बनता है। तो शाह सवार बहुत अच्छे थे, ऐसे उछल के घोड़े पर सवार होते थे और इनका निशाना नहीं चूकता था। अपने घोड़े पे बैठकर जब तीर मारते थे तो दूर से दूर जानवर जो उसको भी ये कर लेते थे। तो अल्लाह के नबी लोगों की छोटी छोटी खूबियों को भी अप्रिशिएट करते थे, तो आपने कहा कि ये बेहतरीन शख्स सवार है। फिर दूसरी बात है कि जब कोई पानी पिए तो सांस ना ले। क्यों ना ले? अल्लाह के नबी ने साइंस नहीं पढ़ी थी, लेकिन आज हमने थोड़ी सी पढ़ ली। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारे जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसी तरह जिस्म के अंदर जो भी कोई जर्म्स हैं या जो भी मेटाबॉलिज्म के जरिए से जिस्म में डिटेरिएशन हुई होती है, उसका कुछ ना कुछ असर आते रेडिएशन हैं, हमारे जिस्म से कुछ रेस निकलती हैं, तो वो पानी के अंदर आएंगी। और लिक्विड की ये खूबी होती है कि ये अब्जॉर्ब कर लेता है, डिजॉल्व कर लेता है। अगर आप पानी के अंदर कोई गैस छोड़ते हैं, आप कोक और सेवन अप और ये फिजी ड्रिंक्स में देखते हैं कि मिक्स हो चुकी होती है ना, तो कोई भी चीज़ होगी तो वो डालेंगे। अब वही चीज़ जो आपके लंग्स ने इतनी मेहनत करके निकाली आपने फिर डाली, यही बात हो गई ना, इसलिए आपने इससे मना कर दिया और मायूब भी लगता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि बैतुल खला में आए तो इसमें एक और बहुत अच्छी बात है कि दाएं हाथ को इस्तेमाल ना करें सफाई के लिए, क्योंकि दाया हाथ अल्लाह ताला ने बरकत वाला रखा है, इसको खाने पीने के लिए रखा है, इसको पढ़ने लिखने के लिए रखा है, और ये किस्म की शर्फ की अलामत है। इंसान जब अपनी ज़रूरियात से फारिग होता है तो ये भी तो एक ज़रूरत ही है ना, इसीलिए अल्लाह ताला ने साथ फिर बायां हाथ भी दिया। और अब आप देखिए कि अगर आज कल्चर ये बन जाए कि खाएं बाएं हाथ में, तो हमें नहीं पता कि शैतान अंदर खाते फिर ऐसे लोगों से जाके शायद अपनी तहारत दाएं हाथ से करवाता होगा। और ये शैतान का एक इतना बड़ा इशू है कि हमेशा खिलाफ शरीयत काम आसान करवाता है। मैं अक्सर कभी राह चलते किसी को देखूं नॉन मुस्लिम्स में खास तौर पे, तो वो बाएं हाथ से ड्रिंक पी रहे होते हैं ना। अक्सर आप देखिए खाएंगे कोई चीज़ तो सीधे से खा लेंगे, पीने का ड्रिंक हमेशा उनके बाएं हाथ में होगा। मैं सोचती हूँ कि इनको तो गुनाह भी नहीं पता, इनको सवाब भी नहीं पता, राइट? हमें पता है ना कि मना है या नहीं मना, अच्छा तो काम है कि नहीं, इनको तो नहीं पता। फिर भी शैतान ने इनको ऐसे बाय चांस गलती से दाएं हाथ में नहीं पकड़वाया, शैतान को पता है ना, इसलिए वो बाएं हाथ से पकड़वाता है। तो ये नापसंदीदा। फिर आप देखिए कि खुदा ना खास्ता अगर नाखनों में कोई गंदगी रह चुकी हो, सफाई नहीं। अब ये हमारे तो आज वाले वो नहीं है ना कि जी आपके हैंड वॉश भी हैं, फिर एंटीबायोटिक्स भी हैं, और फिर आप वो क्या कहते हैं बैक्टीरियल भी हैं, और बाद में आप सेप्टिक से भी बचने के क्या कुछ लोशन लोग यूज़ करते हैं। उस दौर में तो पानी भी नहीं होता था। अब लेफ्ट हैंड से अगर किसी ने तहारत की, हो सकता है जिस हाथ के साथ कुछ गंदगी रह गई, बाद में उसी से खाने लग गया, उससे जिस्म में फिर जर्म्स जाते हैं। इससे पता चलता है कि हमारा दीन तहारत का दीन है। फिर इसी तरह आप देखिए बच्चे, छोटे बच्चों को अमूमन आदत होती है अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ने की। बहुत छोटे बच्चों को जब माएँ फारिग करवाती हैं, पॉटी ट्रेन करवाती हैं, इस चीज़ का ख्याल रखें, कतन उनको इस चीज़ की इजाज़त ना दें, क्योंकि इससे फिर और बहुत सारी कबाख्तें भी आती हैं। और अगर ज़रूरतन इस्तेमाल करना पड़े तो लेफ्ट हैंड, माँ अपना बायां हाथ चूज़ करेगी तो बच्चा भी फिर इंशाल्लाह बायां ही करेगा, लेफ्ट हैंड करेगा। फिर अगला बाप देखिए, अल इस्तिंजा बिल हिजारती, ढेलों यानी पत्थरों से इस्तंजा करना। अब हर जगह पानी नहीं होता, ठीक है, या किसी सूरत में पानी का इस्तेमाल इंसान को नुकसान दे सकता है, तो क्या किया जाए? अनबी हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, इत्तबातु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खरज ली हाजतिही, कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर गए, तो मैं भी आपके पीछे चला गया। फ़काना पस था ला यल्तफितु, पीछे मुड़ के नहीं देखते, यानी नबी सल्लम की आदत थी कि जब चलते तो बिल्कुल सीधा चलते थे, ना आगे देखते ना पीछे देखते, इधर उधर नहीं देखते थे। अब यहाँ से हम खुद भी चेक करें, हम जब चल रहे होते हैं तो हमारी नजरें सार गर्दन हर तरफ घूम रही होती है, आप बिल्कुल सीधे तीर की तरह चलते थे, ला यल्तफित, पीछे मुड़ बताते हैं। फिर क्या हुआ? फदनाउतु मिन्हु, फिर क्या हुआ, मैं आपके करीब गया। ये दनाउतु क्या है? दना यदनु अदना, दुनिया वही है ना, करीब हो गया, यानी मैं आपके जब बिल्कुल करीब गया तो फिर आपको पता चल गया कि पीछे हूँ। फ़काला, तो आपने कहा, उबगिनी अहजारन अस्तनफित बिहा, मुझे पत्थर तलाश करके दो। ये जो उबगिनी है ना, बगी से तलाश करना, फमन इब्तगा का लफ्ज़ कुरान पाक में आप पढ़ चुके हैं, बगा बगी, तलाश करो मेरे लिए अहजारन पत्थर, अस्तनफिस ताकि मैं अस्तंजा करूँ बिहा उनसे, औ या नखवहु, उसी जैसी कोई चीज़, यानी जाओ पत्थर ढूंढ के लाओ छोटे छोटे, ना मिले तो उसी जैसी कोई चीज़ और ले आओ। है वला तातीनी बेअज़्मिन, कहते हैं कि लेकिन फरमाया ये कि ना लेकर आना कोई हड्डी, वला रौसिन और ना गोबर, यानी तुम पत्थर ले आओ, पत्थरों जैसी कोई और चीज़, यानी कोई सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, छड़ियाँ हैं, कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन हड्डियाँ कोई पड़ी हुई है वो ना लाना। और रौस कहते हैं सूखे गोबर को, एक होता है गीला गोबर जो जिस्म से निकलता है, कुरान में हम पढ़ चुके हैं दमी व फरस का लफ्ज आता है कि खून और गोबर के बीच में, रॉस वो गोबर जो बिल्कुल जानवर चलते फिरते गिराते हैं, फिर उसके बाद सूख के किस्म का मट्टी में मट्टी बन चुका होता है, या उपले किस्म के जो देहातों में लोग बनाते हैं ताकि उसको बाद में जलाएं, तो उस तरह की चीज़ है। कहा कि ये ना लाना। खैर फातही तो बिया जारिन, कहते हैं कि मैं चला गया और फिर मैं ले आया पत्थर भी तरफ़न सिया भी अपने कपड़े के कोने में रखकर, यानी काफी सारे थे ना, तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं उसके अंदर डाल के रे कपड़े के अंदर ले आ कई सारे पत्थर, और फिर क्या किया, फवदा दुहा, और मैंने उनको वहां रख दिया, इला जम्बी ही, और मैं एक तरफ हो गया, यानी उनको रखा और उसके बाद मैं एक साइड पे हट गया, फवदातुहा इला जम्बी ही, फिर मैंने उनको एक तरफ रखा, वारत तुम अनहु, और मैं उससे थोड़ा सा एराज कर गया, पीछे हट गया, फलम्मा कदा, फिर जब आप हाजर से फारिग हुए, अतबाहु बिहिन्ना, तो आपने पैरवी की उनकी, यानी उनसे अपने जिस्म की तहारत की। अब यहाँ दो तीन बातें हैं। पहली बात ये कि पिछली रिवायत में हजरत अनस थे, चलिए वो तो घर के खादिम थे, खादिम खास कह लीजिए, प्राइवेट आपके सेक्रेटरी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अबू हुरैरा कौन थे, इल्म की तलाश में आए हुए थे, असहाबे सुफा में से थे। तो यहाँ से फिर आपको एक और मसला, मुहद्दिसीन ने तो इस पर बहुत लंबी बात की है, लेकिन आज के दौर में तो ऐसी चीज़ों की जरूरत ही नहीं शायद पड़ती और इस पर हम बात भी नहीं करते, लेकिन उन्होंने इस पर यह साबित किया है कि इल्म लेने के लिए आने वाला जो इल्म लेता है, अगर वो उस्ताद की खिदमत भी करता है तो ये पसंदीदा है, यानी ये कोई बुरी बात नहीं है। बाज़ औरतों के मुंह से मैंने खुद सुना है, बचपन में जाते थे तो हम तो खाला जी के बर्तन ही धो के आ जाते थे, और हम जाते थे तो सफाइयाँ ही करते रहते थे। पाकिस्तान में एक ट्रेंड था कि मौलवियों के घरों में लोग जाते थे पढ़ने, फिर उनकी बेगमात काम करा लेती थी। शौक से किया तो उसका जिक्र ना करें, अगर आपने किसी की खिदमत अपने शौक से की है तो कीजिए, नबी से सलम मना नहीं करते थे। फिर आप देखिए कि आपने कहा जाओ तुम पत्थर तलाश करके लाओ, हो सकता है कोई के देखे जी खुद नहीं ढूंढ रहे दूसरों को ढूंढा रहे, तो देखिए छोटे से काम कराकर उसको नेकी का मौका भी तो देते हैं ना। आज आप सब भी अपने ऊपर लेके सोचें, आपके बच्चे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे सेहत दे, अपने बच्चों से काम करवाया करें। कल मुझे किसी ने कहा कि ऐसी मेरी कि पहले कभी बात हुई होगी, तो एक माँ से बात हो रही, तो कह रही कि अब मैंने आपकी बात सुन सुनकर अब मैंने अपने बेटे से पाँव दबवाने शुरू कर दिए, और अब वो मेरे साथ साथ किसी के वक्त अपने अब्बू के भी दबा देता है। तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए कि आप देखिए कि बच्चों में आजजी कब आएगी, जब आप उनसे खिदमत करवाएंगे। आप नोट कीजिए ना, अपने जहन में लाइए, एक मासी वो हर वक्त खिदमत कर रही है, कर रही है मालकन, जब वो बेड पे बैठी हैं, सोफे पे बैठी हैं, खा रही हैं, एकदम जहन में क्या आएगा, बड़ा कौन है, डोमिनेंट कौन है, बेगम साहब है ना, मासी हमेशा बेचारी पीछे दबी हुई दिखेगी ना। आप इसको अपने ऊपर लीजिए, अमूमन माएं अपने बच्चों के हर काम को करती हैं, कपड़े भी धोती, खाने भी पकाती, सब कुछ करती हैं, और बच्चों को एहसास भी नहीं होता, तो वही कैफियत नहीं होगी कि बच्चे डोमिनेंट और हम नीचे। करें तो कराएं, एक काम आप कर रहे हैं ना तो दो उनसे करें, छोटे बच्चों से खिदमत शुरू कर दें, बेटा ये पकड़ाना, बेटा ये लेना, बेटा ये करना, बेटी हो या बेटा हो बचपन से काम करवाएं। मैं ऐसे एक ब्रदर को जानती हूँ, किसी सिस्टर के बेटे हैं, तो वो इतना ज्यादा क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। तो एक दफा ऐसी बात हो रही थी तो मेरे हस्बैंड भी इनसे पूछे कि आपको ये आदत कैसे पड़ी, तो कहते हैं कि बचपन से आदत पड़ी है, जब सुबह उठ के हम खड़े होते थे ना तो अम्मी का एक ही हुक्म था कि अपना बिस्तर ठीक करो, कहते हम वॉशरूम में बाद में जाते थे, पहले अपना बिस्तर सही करना, क्विल्ट अच्छा, और ऐसी ऐसी तो औरतें भी नहीं चीज चादर बिछा सकती जैसी मैंने उस ब्रदर को चादरें बिछाते देखा हुआ है ना, इसलिए कि वो पूरे सलीके के साथ वो काम करते हैं, माँ घर ना भी हो या हो भी वो बच्चा खिदमत करता है, तो वो उनके मिजाज का हिस्सा बन गई है, अब वही माँ खिदमत करवा रही है और बच्चा खिदमत कर रहा है, आज ही आती है। आप ये सोचते ना नहीं, हाय बच्चे हाय बच्चे, आप कहते हैं बच्चों में इतनी एनर्जी होती है, अगर आप उनकी एनर्जी को यूज कराएं तो मेरे हाले कई मील एक दिन में वो चल जाते हैं। कभी आप सिर्फ बच्चों की इस घर में दौड़े ही देखें ना जो आपकी लगती है इधर से उधर, आपको थोड़ा सा चक्कर एक लगाएं तो थक जाएंगे। एक दिन सुबह उठ के जरा अपने बच्चों की सारे दिन की दौड़ें देखिए कि वो कितनी दौड़ लगाते हैं। बच्चे खाते हैं फिर हजम करके आते हैं फिर आते हैं, हाइपर होते हैं, ये जो उछला कूदियां करते हैं बेड पे सोफे पे, ये क्या कर रहे होते हैं, वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो खिदमत करवाएं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चों से इस तरह के काम कराएं कि जिससे उनमें आजजी है। मैं अक्सर एक आलिम है, उनका नाम लेती हूँ आपके सामने, उनकी बुक्स भी हम पढ़ते हैं, तो हमने उनके बारे में उनके बच्चों से सुना है कि अब्बू दादी अम्मा का नाक साफ कर करके टिश्यू फेंकते थे, दादी अम्मा की आंखों से आखिरी उम्र में पानी निकलता था, तो अब्बू अपने कपड़े के पल्लू से अपनी माँ के आंसू पोंछते थे और इस तरह के सामने बैठते थे कि जैसे कुरान कहता है कि वक्फ़ लहुमा जनाह, हमने खुद मिन्नतें करके अपने बच्चों को बिगाड़ दिया है। सच जो बात है, कोई बच्चा कड़ा हुआ नहीं आता, हर बच्चा अपने माँ बाप की बात सुनता है, हम उनको इतने लाड़ देखते हैं, उनके नखरे देखते हैं। तो बहरहाल ये बात बच्चों की तरबियत की इसलिए कि आप सब भी माएँ हैं माशाल्लाह, जो हैं जो नहीं है, हम सब के मिजाज के अंदर बहरहाल तरबियत तो है। तो अल्लाह के नबी सल्लम ने उनसे कहा कि जाओ पत्थर लेकर आओ। आप कहते हैं जब पत्थर लेने के साथ ही ये भी कह दिया ऑल्टरनेट देना, ये भी एक बहुत अमल का नुक्ता, इसे नोट कीजिए। किसी से कोई चीज़ आप मंगवाते हैं, जाओ जाके दूध ले आओ, अच्छा दूध ना मिला ना तो फिर उस जैसी कोई और चीज़ ले आना, ऑल्टरनेट भी दें लोगों को। सम टाइम एक ब्रांड एक चीज़ हम बता देते ले आओ, वो नहीं मिलती वो आ जाते, हम कहते अच्छा भाई दही नहीं मिला था टमाटर ही ले आते, टमाटर नहीं मिला था अच्छा लेमन ही ले आते, कहते हैं ना बाद में। पहले बताएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों से काम लेते थे कि आपने उनको कहा कि अच्छा पत्थर ना मिले तो ये ले आना। फिर उसके बाद आप देखिए कि अगली चीज़ है कि हड्डी से क्यों मना किया। पहली बात देखिए कि हड्डी खाने में इस्तेमाल होती है, हड्डियाँ गोश्त में पकती हैं, सालन में आती हैं, तो इसकी तज़ीम के लिए हड्डी को एक खाने की चीज़ है, अल्लाह ने उसको इंसान की रखी, तो इससे गंदगी को पाक करना या गंदगी साफ़ करना, तहारत हासिल करना थोड़ा सा इसकी तज़ीम के ख़िलाफ़ लगता है, पहली बात। फिर दूसरी बात यह है कि बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि हड्डियाँ जो हैं ये नबी सल्लम की एक और रिवायत से भी ये चीज़ मिलती है कि हड्डी जो है ये तुम्हारे जिन भाइयों की खुराक है। इसी तरह बाज़ कहते हैं कि रौस जिन्नों के जानवरों की खुराक है। अब सवाल पैदा होता है कि चले हड्डी तो नहीं कर दी तो फिर रौस क्यों? तो पहली बात देखिए कि वो तो खुद गंदगी है, गंदगी से गंदगी को साफ करना कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात है कि इसको पकड़ते हुए एक इंसान को रौनक भी तो आ सकती है ना, तो इसलिए कहा कि इससे नहीं करो पत्थर लेकर आओ। फिर आप देखिए हजरत अबू हुरैरा की अकलमंदी के कपड़े के किनारे में पत्थर ले आए, अकलमंद थे ना। हम बाज़ दफ़ा बहुत छोटे से काम को बहुत लंबा कर देते हैं, यानी बजाय इसके कि 4-6 दफ़ा आते या थोड़े से पत्थर ले आते, अक्ल का इस्तेमाल जहाँ से दिख रहा है कि उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने कपड़े में लपेट कर लाए ताकि सिमट के आ सके। बच्चों को भी सिखाया करें, छोटा सा बच्चा कोई चीज़ ला रहा है गिर रही है एक पड़ी, उसकी टॉफियाँ क्यों नहीं है, तो उसको सिखाएं कि ये देखो पेपर है इसमें डाल के अब इन सबको इकट्ठा पकड़ो। तो इससे फिर इंसान को वक्त के साथ साथ बाकी चीज़ों पर भी इन चीज़ों को लेने की आदत हो जाती है। फिर आप देखिए कि हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने वो वहाँ रखे और ख़ुद एक तरफ हो गया। कज़ाए हाजत के वक्त कभी भी किसी के सामने नहीं होना चाहिए, इवन बच्चों को। अब यहाँ हम चूंकि तरबियत की बात करें, बाज़ माएँ अपने बच्चों को पास खड़ी कर देती हैं। सबसे बड़ी इसकी जो ट्रेनिंग हो सकती है ना वो कब होगी? जब आप अपने बच्चे को ट्रेन करें। मैंने देखा है आज का तो मुझे नहीं पता क्या हालात है, लेकिन जिन दौर के बच्चे हमने देखे, मैं अपने मामुओं के घरों में तो छोटे छोटे पॉट्स होते थे, माएँ बच्चों को उस पर फारिग कराती थी। पैंपर तो कभी को बांधता था, जब कहीं बाहर जाना है बच्चे खुले ही रहते थे। अब क्या पूरे सहन में पॉट रखा हुआ है या सिंक जहाँ माएँ बैठी हैं बच्चों को रखा हुआ है, माँ सब्जी बना रही है, इंतहाई गलाजत है। हम अपने बच्चों की खुद हया खत्म करते हैं। आप चाहती हैं ना कि आपको कोई ना बाद में देखे, आपका बच्चा आपके पास ना, बच्चे को एक साइड पे करके उसको बात ले दे, उम्मीद मैं इधर बैठी हूँ आप फारिग होंगे तो मुझे बताना, बच्चे के भी सामने ना उसको फील करा। हालांकि आप माँ हैं आप देख रही हैं उसको, लेकिन बच्चे को फील कराएं कि चूंकि तुम इस वक्त फारिग हो रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं देखूंगी। तो जब आप और ओट का एहसास रखेंगी तो बच्चे भी रखेंगे। एक साइड इशू इसमें एक और है, इस दौरान बातें करना। बाज़ माएँ तो अल्लाह उनको हिदायत दे के वो बच्चे को पॉट पे बिठा के खाना खिलाती हैं, बच्चे वैसे हाथ नहीं आते, वो खिलाती हैं ऊपर से फिर वो बैठते हैं और सब बातें शुरू हो जाती हैं क्योंकि बच्चे उठ उठ के भागते हैं। इंतहाई नापसंदीदा बात है। बचपन में माँ ने बातें की, बड़े होकर अगर वो बाथरूम में जाके गाने गुने गा लेते हैं तो क्या बड़ी बात है। तो ऐसे वक्तों में कोशिश करना चाहिए कि कोई बात ना करे, और ये चीज़ें आप खुद उनको सिखा सकती हैं। और अल्लाह के नबी ने फिर पत्थरों से इस्तंजा किया, इससे क्या पता चलता है कि पानी ना हो तो इस्तंजा किया जा सकता है, खुद को क्लियर करना क्लीन करना पत्थरों से। या अब यह अब आज आप देखिए कि पत्थरों की जगह क्या है, मसलन आप देखिए कि आज के टिश्यूज़ हैं, टॉयलेट पेपर हैं, जो चीज़ें सिर्फ इसी चीज़ के लिए बनाई गई हैं तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। बाज़ लोग इस पे भी बड़ी बात करते हैं कि जी ये तो गोरों का तरीका कार है, ठीक है पानी है तो पानी इस्तेमाल कीजिए, पानी का इस्तेमाल बेहतर है, मजबूरन सफ़र में है कहीं है तो वो तहारत जो नमाज़ पढ़ने के लिए ज़रूरी है वो टिश्यू पेपर खाली यूज़ करने से भी हो जाती है, अच्छे तरीके से क्लियर करके रख के उसको करे। और आप देखिए कि खुद ही दिल नहीं मानता, पानी हो और फिर ना इंसान इस्तेमाल करे, ये तो बहुत ही उसके एक गंदे मिजाज होने की अलामत है। लेकिन अब कहीं ऐसी जगह चले गए कि कोई सूरत ही नहीं थी पानी की, तो फिर कर लीजिए। आप लोग कहें नहीं जी हमने नमाज नहीं पढ़नी, हम बाहर गए थे हमने पब्लिक के टॉयलेट यूज़ किया था, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अब थोड़ी सी इसमें हम प्रैक्टिकल बात भी कर लेते हैं, और वो क्या है कि जैसे आजकल हम बाहर के मुल्कों में जो रहते हैं तो हम क्या करें, अमूमन जब पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर उस पानी का इंतज़ाम नहीं होता कि जिससे आप कह लीजिए कि हैंड शावर नहीं होता या लोटा नहीं होता। तो पहली बात है कि आपको पहली दफ़ा तो नहीं जा रहे ना बाथरूम में, पहले भी आप जाते हैं आपको पता भी है ना, इसके लिए पहले से इंतज़ाम रखें। मुझे जो सबसे अच्छा इसमें तरीका लगता है, और अगर कोई इसका इख्तमाम कर सके और पता भी नहीं चले किसी दूसरे को, हमारे घरों में देखिए सैंडविच बैग्स होते हैं ना, जिपर जिसको ऐसे हाथ से करे तो बंद हो जाता है, 2-3 बैग कहीं कम बैग में पड़े हैं तो कोई हर्ज नहीं है, कभी दिखते भी नहीं, कभी कहीं बाहर जरूरत पड़ गई, आप उस जिपर बैग को खोलें, बाहर सिंक से पानी भरें, इतना को भर लें कि ऊपर से हाथ से उसको पूरा बंद करें ना, तो बंद हो गया। थोड़ा सा नोक खुली छोड़ दें और आप जब उसको गिराएंगी ना, तो बिल्कुल एक किस्म की लोटे की तरह की चीज़ बन जाएगी। फारिग हों, पानी के साफ करें, अगर आपको लग रहा है थोड़ा या कोई भी इंसान की हद है, पहले अच्छी तरह से टिश्यू पेपर से साफ कर लें और आखिरी दफा उस पानी से साफ करके उसको डिस्पोज कर दें। कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्पोजेबल ग्लास है, कुछ भी है, बाहर से भी आप पानी ले सकते हैं। इवन अगर आप देखिए कि साफ टॉयलेट है जिसके अंदर पहले से पानी है या फ्लश करते हैं, तो नीचे उसके गिरने से पहले जो ऊपर पानी आ रहा है उससे कपड़े को भिगो लीजिए, कागज को भिगो लीजिए। तो मतलब इंतजाम करना हो तो कर सकता है इंसान, लेकिन कहने का मकसद ये कभी अपनी नमाज ना छोड़े इस वजह से। मैंने ये आम मसला देखा लोगों का, नमाज नहीं पढ़े घर जाएंगे जी साफ होंगे फिर पढ़ेंगे, भाई ये हुआ था। तो अगर नमाज नहीं पढ़ सकते तो हम अपने आप को गंदा रख के भी तो नहीं फिर सकते, तो इसमें बहुत ज्यादा वहम भी नहीं करना चाहिए।